ओम ऋग्वेद प्रथम मंडल 23वां सूक्त और 22वां मंत्र। इदम आपः प्रवहत यत् किं च दुरितमयी यद्वाहमभ्य दुद्रोह यद्वा शेपौतान्ऋतम्। पदार्थ, मैं यत् जैसा किम कुछ मई कर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझ में दुरितम दुष्ट स्वभाव के अनुष्ठान से उत्पन्न हुआ पाप च वा श्रेष्ठता से उत्पन्न हुआ पुण्य वा अथवा अयत अत्यंत क्रोध से अभिदुद्रोह प्रत्यक्ष किसी से द्रोह करता वा मित्रता करता वा अथवा यत जो कुछ अत्यंत ईर्ष्या से किसी सज्जन को शेपे शाप देता वा किसी को कृपा दृष्टि से चाहता हुआ जो अनृतम झूठ उत वा सत्य काम करता हूँ इदम सो यह सब आचरण किए हुए को आप मेरे प्राण मेरे साथ होके प्रवहत अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं। भावार्थ, मनुष्य लोग जैसा कुछ पाप व पुण्य करते हैं सो ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से उनको प्राप्त कराता ही है। देखिए, हमने पिछले मंत्र में चर्चा की कि हम मनुष्य किस प्रकार से अपने जीवन में किए हुए कामों के संस्कारों में फंस जाता है। मुझे लगता है कि पिछले मंत्र में हमने थोड़ी आगे की चर्चा कर दी थी, तो जो हमने पिछले मंत्र में ये जाना था कि जो भी मनुष्य करता है उसका जो कार्मिक प्रिंट होता है वो उसके शरीर में उसके मन में छपा रह जाता है। यह मंत्र वही बात कह रहा है। यह मंत्र कह रहा है कि जब मैं क्रोध करता हूँ या फिर मैं किसी से प्रेम करता हूँ या फिर मैं कोई गलत काम करता हूँ या सही काम करता हूँ, मुख्य रूप से 100 बात की एक बात कि यदि मैं कोई अच्छा काम करता हूँ जिसका सुख रूप फल होने वाला है या कोई मैं बुरा काम करता हूँ जिसका दुख रूप फल होने वाला है ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार, वह जो कर्म किया जाता है मेरे अंदर वो कर्म होके ख़त्म नहीं हो जाता। वो कर्म हो जाने के बाद उसका जो प्रिंट है, उसका जो एक रिकॉर्ड है, वो मेरे मन में या मैं कह लीजिए मेरे जो प्राण हैं उन प्राणों पर वो प्रिंट हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई तरंग है, कोई वेव है, वो जब वेव निकलती है तो उसका जो प्रिंट रह जाता है ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है। मान लीजिए बिजली कड़की, आपने देखा बिजली कड़कने के बाद आपने देखा होगा कि उसका जो डिज़ाइन होता है जिस वे में वो कड़कती है वो 2-3 सेकंड के लिए आपको छपी रह जाती है आपकी आंखों में। बिजली कड़कने के बाद एकदम से वो गायब नहीं हो जाती, वो आपके दिमाग में छपी रह जाती है। ठीक वैसे ही जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा मन और शरीर दोनों इन्वॉल्व होता है, बल्कि आत्मा भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि कराने वाला आत्मा ही है। मन और शरीर अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, वे मृत है। यदि आत्मा शरीर और मन का साथ छोड़ दे तो मन और शरीर अपने आप से कुछ नहीं है। ये जो उन्हें करंट पावर सप्लाई मिल रहा है वो आत्मा से मिल रहा है और आत्मा ज्ञान धारण करता है। मन और शरीर के पास ज्ञान नहीं है, वे अपने से कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके मन में इच्छा ना होगी, जब तक आपके आत्मा ये निर्देश नहीं देगा मन को कि मुझे ये काम करने की इच्छा है, तब तक आपका मन निर्देश नहीं देगा आपके शरीर को या बुद्धि को या मतलब हार्डवेयर को कि वह उस काम को करे। तो निर्देश आएगा आत्मा से, जाएगा सॉफ्टवेयर मन के पास और सॉफ्टवेयर मन शरीर रूपी हार्डवेयर से काम करवाएगा। ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो अगर मैं मेरे मन में किसी भी अज्ञानता का या ज्ञान का कोई एक तरंग उठी कि मुझे ये पुण्य काम करना है या मुझे ये पाप कार्य करना है, तो वह मन से होता हुआ शरीर को जाएगा और जब शरीर से वो कार्य होगा तो वो वापस एक ना प्रिंट छोड़ता है मन के अंदर और मन में जो है प्राण जो है वह मन के माध्यम से कार्य करता है। शरीर में भी प्राण होता है परंतु वह मन क्योंकि पूरे शरीर में व्याप्त होता है और मन के अंदर प्राण होता है तो वह प्राण जो है मन से और मन से शरीर को तरंगे जाती हैं। तो जब शरीर कोई कार्य कर चुका होता है तो वो जो उसका अनुभव होता है 5 इंद्रियों से, हमारी जो 5 इंद्रियां होती है, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चखने की शक्ति और स्पर्श की शक्ति, जो हम किसी का छुआ हुआ महसूस कर सकते हैं स्पर्श, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये वापस मन के पास आते हैं। तो इसीलिए जैसे उदाहरण के लिए किसी को आइसक्रीम पसंद है आइसक्रीम खाई, तो आइसक्रीम में कौन सी इंद्रिय काम कर रही है? स्वाद की, रसना वाली। तो जब वो स्वाद ले लेती है जीव, तो वो शरीर ने स्वाद लिया, उसने मन को एक निर्देश दिया कि इसका टेस्ट ऐसा है, और मन ने क्या करा, ऊर्जा के स्तर पे या प्राण के स्तर पे एक ना तरंग सेट कर दी, एक वेवलेंथ सेट कर दी, एक उसको वाइब्रेशन सेट कर दी, कि जब जब वो उसको आइसक्रीम दिखाई देगी या उसको स्वाद मिलेगा, जब जब उसको ट्रिगर होगा वो उसी सेम चीज़ का, तब तब वो जो वाइब्रेशन है वो एक्टिव हो जाएगी। और हम एक समय ऐसा आएगा जब वो बार बार उस काम को करेगा तो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि वो आत्मा को भी सुपरसीड कर जाता है। मान लीजिए कल को आत्मा ये कहता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, तो उसकी लड़ाई हो जाएगी अपने वाइब्रेशन के साथ, अपने जो तरंग उसके अंदर बैठी हुई है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और इधर आत्मा कह रहा है नहीं खानी है, तो इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, जीतेगा वो जो ताकतवर होगा। इसलिए मैंने पिछले मंत्र में कहा था कि अगर योग आपके साथ में नहीं है तो आपको बहुत बड़ी विल पावर की आवश्यकता है, यानी आत्मा विल पावर आत्मा का कार्य है। यदि वो आत्मा इतना ज़्यादा स्वयं को प्रबल बना ले तो वह अपना वर्चस्व कायम कर लेगा। इसी चीज़ को श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी महाराज बोलते हैं कि आत्मा को इतना बलवान बनाइए कि वह अपनी इंद्रियों को जीत ले, जितेंद्रिय कर ले। वो विल पावर की बात कर रहे हैं वहाँ पे, और भी कई साधन उन्होंने बताया जिसमें प्रमुखता है विल पावर की वहाँ पर। परंतु जो योग की क्रिया होती है वो क्या करती है, वो जो इन वाइब्रेशंस को माइल्ड कर देती है। इसको समझिएगा, ये बहुत अच्छा बड़ा रुचिकर विज्ञान मुझे लगता है। ये क्या करता है कि जब आप सीधा प्राणों पर कार्य करते हैं तो ये जो वाइब्रेशंस होती है ना शरीर की, इसमें और आपके आत्मा में, आपकी जीवात्मा के बीच में एक स्पेस आ जाता है, और जब ये स्पेस आ जाता है ना तो आत्मा को इतना अवकाश मिल जाता है कि वह उस वाइब्रेशन को कंट्रोल कर ले तुरंत ही, वह वाइब्रेशन उसके अधीन हो सकती है। और वाइब्रेशन क्या है, मुख्य रूप से प्राण ही है। जो हम सांस ले रहे हैं ये तो बहुत बड़ा स्थूल स्वरूप है, परंतु जब ये सांस भीतर जाता है तो ये पूरे शरीर के एक एक सेल को, एक एक विद्युत को, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित करता है। तो जब हम योग की क्रिया करते हैं तो मुख्य रूप से इसी इलेक्ट्रिसिटी, इसी विद्युत और वायु के ऊपर हम कार्य करते हैं। तो ये जो विद्युत और वायु है, इनको, इनके ऊपर जब हम कार्य करते हैं तो जब ये एक सीध में आ जाते हैं तो ये आत्मा के अधीन हो जाते हैं सरलता से। फिर आपके ऊपर, आप किसी भी, आज का जो जमाना है खासकर शहरों का, गाँव में तो फिर भी चलिए मैं इतना जानता नहीं, परंतु शहर में तो इतनी दबाव की स्थिति होती है, इतना शोर शराबा होता है, इतना ढोंग पाखंड होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, उस उन सब के बीच में आपको रहना, अपने संस्कारों को बचाना, अपने भविष्य को तय करना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। लोगों की जीवन खप जाते हैं, लोग हार मान जाते हैं, लोग कहते हैं हमारे बस की नहीं है, यही जीवन है, इसको हमने स्वीकार कर लिया, और इसमें भी अपने लिए रास्ता बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ऐसे में योग आपका बहुत मदद करता है। तो ये मंत्र यही बोल रहा है कि आपका किया हुआ सत्य कार्य या झूठा कार्य, वो कि करने के बाद तुरंत ख़त्म नहीं हो जाता, प्राणों के पास उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है और ये पूरा एक डेटाबेस तैयार होता जाता है। तो जैसे जैसे आपका शरीर विकास करता जाता है, जैसे जैसे आपके अंदर प्रौढ़ता आती जाती है, तो समझिए आपका जैसे शरीर बढ़ता है वैसे मन भी बढ़ता है, वैसे आपका अंदर की संरचना बदलती है। तो ये जो प्राण है ये प्राण भी और मजबूत होता है, बचपन से लेकर युवावस्था तक जाते जाते ये प्राण बढ़ जाता है, ये मजबूत हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे संस्कार प्राणों में छप रहे हैं तो प्राण के ताकत के साथ वे संस्कार भी तो ताकत को प्राप्त हो जाएंगे। ये तो बहुत मोटी सी बात समझ में आने वाली है। यदि प्राण सारे संस्कारों को धारण कर रहा है तो जब मेरे प्राण बलवान होंगे तो ये तो संस्कार भी बलवान हो जाएंगे मेरे, सीधी सी बात है। तो अगर ये कुसंस्कार होंगे तो मेरे को वो बुरा आदमी बना देंगे, मेरी पर्सनैलिटी बदल देंगे। यदि ये सुसंस्कार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, तो ये मेरी पर्सनैलिटी कुछ और कर देंगे। तो वास्तव में जीवात्मा पर्सनैलिटी नहीं होता, पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ है, पर्सनैलिटी परत है, ऊपर से कवर है। जैसे फल है उसके अंदर बीज है, बीज के ऊपर जो बाहर का जो खोल है, जो भी माल मसाला है, वो कवर है उसका, वो पर्सनैलिटी है। परंतु जो जीवात्मा है उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, उसके गुण होते हैं कुछ, वो बहुत ही बेसिक होते हैं, उसको पर्सनैलिटी नहीं कहा जा सकता। परंतु जो पर्सनैलिटी होती है वो बाहरी आवरण होता है, वो मेन चीज नहीं होती। पर्सनैलिटी बदली जा सकती है, पर्सनैलिटी को आप चेंज कर सकते हैं। आप जो पैदा हुए हैं वैसे नहीं होते हैं, आपके कई जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में आपकी पर्सनैलिटी अलग अलग थी। आगने वाले जो जन्म होंगे वो पर्सनैलिटी अलग होगी। तो ये पर्सनैलिटी जो होती है, ये मुख्यतः जब जीवात्मा किसी पर रिस्पॉन्ड करता है किसी परिस्थिति को लेके, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको कैसे उसका जवाब दे रहा है, क्या ज्ञान के साथ दे रहा है या अज्ञानता के साथ दे रहा है, उसके आधार पर तय होता है कि आपके प्राणों पर किस प्रकार का प्रिंट या किस प्रकार की रिकॉर्डिंग जाएगी। वही मैंने कहा पिछले मंत्र में, जब हम अनजाने में कोई कार्य कर जाते हैं तो उसके अनजाने उसका, देखिए ईश्वर आपके ज्ञान और अज्ञान के हिसाब से अपनी न्याय व्यवस्था नहीं बदलेंगे। उनकी तो एक व्यवस्था है भाई, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि भाई देखो चोरी करोगे तो उसका दंड है। तो एक दंड होता है जो हमारी न्यायपालिका हमें देती है, परंतु उससे बहुत सूक्ष्म और बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे भीतर का तंत्र जो ईश्वर ने बनाया हुआ, उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। तो वो जो सिस्टम है अंदर का, जो कार्मिक प्रिंट उठा रहा है आपके कामों से, वो अपना एक फल देगा। अच्छे करोगे तो बुरा अच्छा फल देगा, बुरा करोगे तो बुरा फल देगा। उस प्रिंट के आधार पर ईश्वर जो है आपको जन्म देते हैं। उस ईश्वर उसकी जो व्यवस्था है उस प्रिंट को पकड़ती है। एक तो प्राण आपके शरीर में चल रहा है वो अलग चीज़ है। अभी देखिए इसके ऊपर एक और चीज़ आती है, ये और मजे की बात है। एक तो प्राण हमारे शरीर में चल रहा है तो बहुत ही छोटी चीज़ है, एक पूरे विश्व का प्राण चलता है, पूरे ब्रह्मांड का एक प्राण होता है। ये जो ब्रह्मांड का प्राण होता है ना, ये आपके प्राणों को पढ़ लेता है आपके जो, और वो तटस्थ होता है। जो विश्व का प्राण है, जो ब्रह्मांड का प्राण है, वो तटस्थ है, वो किसी के साथ फेवर नहीं करता, वो परमात्मा द्वारा संचालित है। क्योंकि परमात्मा स्वयं निराकार है, परमात्मा, ये भी देखिए एक पॉइंट है कि ईश्वर अवतार क्यों नहीं लेते। ये जो सारा प्राण है, ये सब आप सोचिए, आपके खुद के शरीर के प्राण आपसे नहीं संभल रहे, और ये तो पूरे मैं ब्रह्मांड के प्राण की बात कर रहा हूँ, जो कि पता नहीं कितनी कितनी तो गैलेक्सियां चला रहा है, कितनी कितने तो असंख्य तारे ग्रह, पता नहीं क्या क्या आकाश गंगाएं चला रहा है। वो सोचिए वो क्या प्राण होगा। तो उसको नियंत्रित करने के लिए उसी की कैपेसिटी का एक बीइंग चाहिए, एक एंटिटी चाहिए, एक पदार्थ चाहिए। जैसे हम हैं जीवात्मा, हमारे अधीन हमारे प्राण हैं, ठीक वैसे ही एक आत्मा वहां चाहिए उस लेवल पर जो उस प्राणों को नियंत्रित कर सके। और इसीलिए ईश्वर कभी अवतार नहीं लेते, उनको आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। जो कण कण में व्याप्त है, जो हर जगह पर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, वो एक छोटे से घड़े में वो अपने कार्य प्रणाली को छोड़ के अगर आने लगेगा तो उसकी सब व्यवस्था चौपट हो जाएगी। वो अपने कभी भी सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकता, और वो तोड़ेगा चमत्कार करेगा तो वह ईश्वर नहीं है, वो ठग है, वो झूठ है, और वो दूसरी दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये मैं आपको बात कोई पढ़ के नहीं बता रहा, मैं आपको सैद्धांतिक रूप से बता रहा हूँ। अगर आप लॉजिक से समझेंगे इस चीज को, अगर आप लॉजिक से समझते हैं इस चीज़ को, जो इतने बड़े अपने प्राणों को अगर आपने ठीक से समझ लिया ना, तो आप ईश्वर को समझना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। अगर आपने अपने प्राणों को समझा तो आप अपने आप को यानी जीवात्मा को समझ पाएंगे, और अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो आपको प्राण ईश्वर को समझना ईजी हो जाएगा। प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं समझने की बात कर रहा हूँ। और जब ये आप समझेंगे कि जब कैसे किस प्रकार से विश्व के प्राणदाता कैसे वो प्राणों को नियंत्रित कर रहे हैं, और एक भी काम अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। आप देखिए धरती कभी भी एक सेकंड का डिले नहीं करती है सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने से। और देखिए धरती जैसे पता नहीं कितने ग्रह होंगे और कितने तो सूर्य होंगे, आप अंदाजा लगा के देखिए, सब बराबर अपना काम एक एक मिली सेकंड तक बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो ये भी हमें बताता है कि वो जो प्राण है ना, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। और वो प्राण अगर पक्षपात नहीं कर रहा है तो उस प्राण का नियंता भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ये भी समझने की बात है। तो जब वो पक्षपात नहीं करता तो वो न्यायकारी हुआ। तो जब उसने ये जो सिस्टम रचा हुआ है हमारे शरीर का, ये जो प्राण उसका जो सिस्टम है, ये हमारे जो शरीर मन के प्रिंट्स है ना, उन्हें पकड़ लेता है। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको अमुक टाइप का जन्म चाहिए तो आप अपने कर्मों को, यानी जो आपके अधीन आपके प्राण हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो। जो विश्व के प्राण हैं उन पर आपको कुछ बस नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो किसी जीवात्मा के बस की नहीं है। आप इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा भगवद गीता में कि आप कभी भी फलों को नहीं बदल सकते, आप अपने कर्मों को बदल सकते हो। कर्म बदल लोगे तो आपको मनचाहा फल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फल को बदलने की सोचोगे और कर्म को भूल जाओगे तो आप एक बहुत बड़े जाल में फंस जाओगे जो आप ही का बनाया हुआ होगा। यह आत्मज्ञान की बात श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में। तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको खोल के समझा रहा हूँ कि हम अपने प्राणों को अपने अधीन करके, अपने जीवन को अपने अधीन करके हम पात्रता हासिल कर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी। हम अपने अंदर की कॉम्पिटेंस को विकसित कर सकते हैं कि जो ईश्वर का जो सिस्टम है वो हमें पहचान ले कि भाई ये योग्य व्यक्ति है, इसको ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो वो जो योग्यता हासिल करने के लिए हमें अपने प्राणों पर कार्य करना चाहिए। प्राणों को कंट्रोल करने के बहुत से स्तर हैं और ये बहुत वास्ट क्षेत्र है। इस पर शिव जी जो थे, शंकर जी, उन्होंने बहुत कार्य किया था और उनको आज का जो हम जो योग सीखते हैं, देखते हैं, पारंपरिक रूप से जो कार्य कर रहा है उसको हम शिव जी द्वारा ही मानते हैं कि वो हम तक पहुंचा है एक परंपरा के रूप में, जिसमें कई लोगों का योगदान बीच में रहा है, कई ऋषियों का योगदान रहा है। तो ये विद्याएं हम तक पहुंची हैं उन सभी के योगदान से। तो इनके जो इनका हो, मैं ये मानता हूँ पक्का कि शिव जी से पहले भी ये विद्याएं थीं, शंकर जी जो हैं उनसे पहले भी ये विद्याएं थीं। और जब मैं शंकर जी बोल रहा हूँ, ये वो शंकर जी मैं नहीं बोल रहा हूँ जिनको बहुत महिमा मंडित करके बताया जाता है, जो कि सत्यता से कहीं परे है। शिव जी, शंकर जी आपकी हमारी तरह ही एक बहुत मनुष्य थे, परंतु बहुत श्रेष्ठ मनुष्य थे। उनके पास बहुत सी विद्याएं थी, वे बहुत बड़े महापुरुष थे, वे वेदों के ज्ञाता थे, वैज्ञानिक थे, सबसे बड़ी बात थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और उनकी प्राणों पर बहुत ज़बरदस्त महारत हासिल थी। उन्होंने ही तंत्र की रचना भी की, जिसको ये आजकल जो बहुत तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके दुरुपयोग भी बहुत हुए, परंतु उन्होंने इस विश्व के सामने ये चीज़ें रखी कि ये जब सब चीज़ें संभव हैं प्राण के माध्यम से। ये पूरा साइंस था, पूरा विज्ञान था। उसको आगे किस तरह से लोगों ने यूज़ किया, उसको बदनाम किया, वो एक अलग विषय है, परंतु जो चीज़ है उसको नकार नहीं सकते। वो चीज़ है, उसको मानना ही पड़ेगा। अगर किसी चीज़ का अस्तित्व है, उसको ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। जो चीज़ हैं वो हैं, उसको मानना चाहिए, यही सत्य अनुष्ठान है। तो जो उन्होंने किया, जो विद्याएं दी, उसके माध्यम से ही हम आजकल ये जो योग परंपरा से सीखते हैं क्रियाएं आदि, उनसे प्राणों पर हम को अधीन लेकर फिर अपने ज्ञान का उस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। ये एक सही तरीका होता है। और शिव जी के द्वारा हमको ये सब प्राप्त हुआ। उससे भी पूर्व कई ऋषियों ने इस पर कार्य किया होगा, क्योंकि शिव जी से बहुत पुरानी सृष्टि है, परंतु आज का जो आधुनिक युग है उसमें उन्होंने परंपरा सेट की होगी शायद शिव जी ने। ऐसा बोला जाता है कि 7 ऋषि थे जिन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है, उनको उन्होंने वो डायरेक्ट विद्या दी थी, ये सारी स्किल्स सिखाई थी कि किस प्रकार से प्राणों को अधीन किया जाता है, जीवन मृत्यु को अधीन किया जाता है। तो उसमें कई आयाम है, बहुत गहराई है उसमें, मतलब एक तरह से ये पूरा सब्जेक्ट है। आप चाहें तो इसमें बेसिक प्रिलिमिनरी भी काम कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा गहराई से सीख कर आप इसमें और आगे जा सकते हैं, परंतु ये निर्भर करता है सबसे पहले कि आपका उद्देश्य क्या है। ऐसे हर चीज़ की कोई सीमा नहीं है। वेद में भी जितनी शाखाएं हैं विद्याओं की, उनकी कोई सीमा नहीं है, उसमें बहुत आगे जा सकते हैं आप, परंतु आपको ये तय करना है सबसे पहले कि आपको अपने जीवन के लिए क्या ज़रूरी है। तो मुख्य रूप से हम लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपने परिवार की, समाज की, राष्ट्र की। तो सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए ही हमको योग विद्याओं का चयन करना चाहिए, और भावनाओं में ना बह के हम लोगों को ध्यान से अपनी सरल से जैसे चाहे आपको सरल की आवश्यकता है, चाहे गहन विद्या की आवश्यकता हो, उस हिसाब से आप सीख सकते हैं। परंतु एक चीज़ मैं कहूँगा कि प्राण अपने आप में जितनी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप इसको ठीक से ना करें तो ये बहुत घातक भी साबित हो सकती है। जिस प्रकार से एक हाथी है, हठयोग प्रदीपिका में प्राण की तुलना एक हाथी से की गई है। यदि आप इस हाथी को कंट्रोल कर लोगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत सवारी है, बहुत काम कर देगा। परंतु यदि आपके हाथ से निकल गया तो यह आपको मृत्यु के द्वार तक भी जाके खड़ा कर सकता है। तो ठीक वैसे ही जो ये प्राण है, यही जीवन है। अगर इस जीवन को हम ठीक से संभालें, संभालना सीखें, तो ये हमें बहुत आगे तक ले जाएगा। परंतु यदि हम इसको गलत तरीके से करते हैं, प्राणों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसा इसका स्वरूप है, अगर उसको गैर जिम्मेदारी से हम हैंडल कर लेते हैं और बदकिस्मती से हमें ऐसा ही कोई व्यक्ति मिल जाता है जो खुद को खराब कर चुका है, अब गुरु बनने के नाम पे आपका भी भंडाधार करने में लगा हुआ है, तो ये तो बदकिस्मती है। ईश्वर से प्रार्थना है ऐसे लोगों को सही मार्ग दिखाए, उनकी रक्षा करें। परंतु प्राणों को एक योग्य गुरु से सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव है, मैंने जिनसे सीखा है, वो बहुत अच्छे गुरु हैं। उनका बहुत योग, उनका बहुत अच्छे पकड़ है, उससे लाभ प्राप्त होता है। लाभ, मैं ये नहीं कह रहा मेरा पैर की मोच ठीक हो गई, मैं उसको लाभ नहीं मानता हूँ, वो बहुत शुद्र सी चीज़ें हैं। जीवन को समझने में, जीवन की गहराई को समझने में, अपने आप को समझने में, अंतरात्मा में अवलोकन करने में, जो योग की का वास्तविक स्वरूप है, उस तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनकी स्किल है। तो आप चाहें तो उनका ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जो भारत की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है अभी। ये जीवन की एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सीख कर जीवन में उपयोग करके, अपने ईश्वर की उपासना करके, ईश्वर से प्रार्थना करके कि हमें साधन तो आपने दिया, परंतु बुद्धि भी ऐसी दीजिए जिससे कि हम सत कल्याण को प्राप्त हों, कभी भी जीवन में अशुभता को प्राप्त ना हो, हम हमेशा वैसे कर्म करें जैसे वेद में आपकी आज्ञा है और उसके विपरीत कभी ना जाएं। ओ